Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama, Rama, Hare Hare.
Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
So, aap sabka swagat hai. बलराम देश के श्री नर सिंह देव गौर निताय कृष्ण बलराम राधा बहरलेश्वर राधा श्याम सुंदर सेंटर में फर्स्ट डे बृहस्पतिवार के सायंकाल के भगवद गीता के दर्शन यूर ऑल वेलकम फॉर दिस इवनिंग फॉर भगवद गीता दर्शन Why Krishna appeared particularly in case as it is related to Bhagavad Gita? Bhagavan Sri Krishna ke avatar Bhagavad Gita ki drishti se kyun hua? Why Krishna appeared in light of Bhagavad Gita? I am simply speaking in different contexts. क्यों भगवान का अवतार हुआ हाँ? धर्म स्थापना के लिए काय के लिए भगवान का धर्म स्थापना के लिए और भगवान ने धर्म स्थापना कैसे किया धर्मराज युधिष्ठिर को इस पृथ्वी का राज दिया यानी धर्म धर्म राज युधिष्ठिर वो धर्मराज थे उनको भगवान ने इस पृथ्वी का राज दिया right? तो इससे व्हाट वी शुड कंक्लूड फ्रॉम दिस अगर जीवन में धर्म धर्म को स्थापित करना है इफ वी हैव टू रिवाइव धर्म इन अवर लाइफ इंडिविजुअली और कलेक्टिवली नेशनली और इंटरनेशनली अगर धर्म को स्थापन करना है तो भगवत गीता की टीचिंग इनएविटेबल है अनिवार्य है फिलोसॉफिकली इस बात को स्टैब्लिश करना चाहिए पहले गीता का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ तो जिसको जीवन में धर्म स्थापित करना है उसको गीता की शिक्षा जीवन में लाना अति आवश्यक है इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू स्टडी भगवद गीता अगर हमको धर्म के ऊपर चलना है हमारा जीवन धार्मिक बनाना है तो ये धार्मिक की बात है कोई रिलीजन की बात नहीं है तो ये बहुत इसको समझना चाहिए कि भगवद गीता हर एक के लिए बहुत आवश्यक है इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी लाइक टू मेक इट धार्मिक धार्मिक एक्चुअली धार्मिक अर्थ है स्पिरिचुअल जिसको अपना जीवन आध्यात्मिक बनाना है उसको गीता का अध्ययन करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे गीता का अध्ययन करना चाहिए तो गीता धर्म के स्थापना के लिए है और धर्म जीवन में लाना है तो गीता का अध्ययन करना अति आवश्यक है ये एक सिद्धांत है और एक सिद्धांत दो दिन पहले आपको बताया था कौन सा भगवद गीता का स्टूडेंट पहला कौन सा है सूर्य देव पूरे विश्व को एक सूर्य प्रकाश देता है कि नहीं देता अगर पूरी दुनिया एक सूर्य से प्रकाश ले सकती है और सबको ये सूर्य जीवन दे रहा है जब सूर्य उगता है तो सब उठते हैं फिर कमाते हैं फिर खाते हैं तो एक ही भगवान श्री कृष्ण का स्टूडेंट पूरे विश्व को रोशनी भी दे रहा है प्रकाश भी दे रहा है जीवन भी दे रहा है इससे सिद्धांत ये स्थापित होता है कि जिसको जीवन में एनलाइटमेंट चाहिए जीवन में प्रकाश चाहिए जीवन में सुख समृद्धि शांति चाहिए उसको भगवान के इस भगवद गीता का अध्ययन करना आवश्यक है दिस स्टेटमेंट भगवान ने सूर्य को गीता की शिक्षा दी ये सिद्धांत स्थापित करती है कि टीचिंग ऑफ गीता आर यूनिवर्सल लाइक दी सन इज यूनिवर्सल। एक ही सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश करता है, ऐसे एक ही गीता पूरे मानव समाज के लिए, मानव मात्र के लिए, मीन्स फॉर ऑल मैनकाइंड, ये बहुत इसको कहा जाए कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जीवन का हर एक के जीवन में होना चाहिए। इस दुनिया में आधे लोग तो धर्म के ऊपर चलते ही नहीं, उनको तो पता भी नहीं धर्म क्या है, और आधे लोग जो धर्म के ऊपर चलते हैं वो धर्म को जानते नहीं कि धर्म है क्या। अब धर्म क्या है अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो धर्म राज कहता है कि धर्म वो है जो भगवान देता है, धर्मात् साक्षात् भगवत् प्रणीतम्। ये धर्म राज कहता है कि धर्म वो है जो भगवान देता है, तो भगवत गीता किसने दिया? तो धर्म कौन देता है? भगवान देता है। ये भगवत गीता भगवान ने दिया, ये मोस्ट अथॉरिटेटिव, सीधा भगवान के मुख से ये वाणी निकली है। ये धर्म कौन देता है? ये धर्म भगवान ने दिया, ये कितना प्रमाण है। धर्म कौन देता? धर्म भगवान ने दिया, द सॉन्ग ऑफ गॉड, ये भगवान का गीत है, तो भगवान ने ये धर्म दिया। तो कितने तीन सिद्धांत समझने चाहिए पहले भगवत गीता के दृष्टि से। जीवन में धर्म को लाना है तो भगवत गीता बहुत ही मुख्य जीवन में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आई ही धर्म स्थापना के लिए। गीता इज अपीयर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्म फॉर होल मैन काइंड और फॉर इंडिविजुअल, कहीं भी आप ले लो, व्यक्तिगत या सामाजिक या विश्व व्यापक, गीता इज इम्पोर्टेंट। गीता का एक स्टूडेंट विश्व भर को प्रकाश दे रहा है तो गीता यूनिवर्सल है, इसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। और तीसरा अभी क्या बताया, धर्म कौन दे सकता है? भगवान देता है, धर्मराज कहते हैं, तो ये सीधा भगवान के मुख से निकल रहा है। जैसे भागवत भी भगवान के अवतार व्यास देव ने दिया है, लेकिन ये तो परम पुरुष भगवान स्वयं अपने मुख से भगवत गीता का उपदेश कर रहे हैं। तो ये तीन सिद्धांत समझ के भगवत गीता को अपने जीवन में जोड़ देना चाहिए। और सुबह मंगल आरती में क्या बात बताते हैं? सुबह दूसरी लाइन में क्या है? महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता। तो उस गीता का अर्थ गीत भी ले सकते हैं, लेकिन गीता शब्द का अर्थ नहीं, तो गीता है। तो महाप्रभु ने भी इस भगवत गीता के शिक्षा को, भागवत को प्रणाम प्रमाण कहा है, भागवतम प्रमाणम अमलम, स्पॉटलेस पुराण है, लेकिन प्रमणरी स्टडी भगवत गीता है। तो महाप्रभु का भी, और विशेष रूप से भगवत गीता के कुछ श्लोकों का महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य आदि को, जो उसको थोड़ा सा इम्पर्सनल देख रहे थे, उनको समझाया है। तो महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, तो गीता का वहां भी उल्लेख किया। और श्री प्रभुपाद के विश्व भर में प्रचार में मुख्य है उनका, वो तीन पुस्तक हमेशा अपने साथ रखना चाहते थे, भगवत गीता यथारूप, पहला स्कंद भागवत, और लॉर्ड चैतन्य की टीचिंग। ये तीन पुस्तक में सब कुछ है, तो भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितमृत, ये तीनों, ये प्रभुपाद का, जितने प्रभुपाद के आप पब्लिक लेक्चर देखेंगे भगवत गीता के, भागवत फॉर डिवोटीज, चैतन्य चरितमृत पर्टिकुलरली विद इन डिवोटी सर्कल, बट पब्लिक प्रीचिंग भगवत गीता। तो भगवत गीता की ये महिमा को पहले समझना, और फिर भगवत गीता के दो श्लोक हमने सिर्फ तीन दिन के लिए लिए थे, पांचवें अध्याय से। पांचवें अध्याय का नाम है कर्म योग, और कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और हमने ये इसलिए सिलेक्ट किया कि हम सब कर्म ही कर रहे हैं बेसिकली, तो सब काम ही कर रहे हैं, तो कर्म ही तो कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा योग बना लें, नहीं तो केवल कर्म रह जाएगा। कर्म रह गया तो फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। हर एक कर्म का फल होता है, अच्छा या बुरा। जो भी कर्म करोगे उसका फल होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, दोनों हमको भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो कर्म योग हो जाएगा तो हम फल को भोगने से बच जाएंगे। तो कर्म योग का मतलब कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना। और प्रभुपाद ने फिर उसके लिए छब लिखा, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कर्म करना तो हम छोड़ ही नहीं सकते, कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों हम काम करना छोड़ नहीं सकते, क्यों? बाय विकास फॉर सर्वाइव, अपने जीने के लिए। प्रभुपाद आंसर इज बिकॉज सोल इज एक्टिव। आत्मा इतनी सक्रिय है कि आप कहते हैं केवल मरा हुआ ही आदमी जो है वो बेकार होता है, बाकी सब काम करते हैं। एक ने तो ऐसे कहा, हम अभी से बदमाशी कर रहे हैं और आखिर तक मरते भी चार के कंधों के ऊपर चढ़ के जाएंगे तब भी नीचे नहीं चलेंगे, ऊपर चढ़ के जाएंगे चार के कंधों के ऊपर तो उस वक्त तो सिद्धांत क्या है कि जीवात्मा बाय नेचर सक्रिय एक्टिव है, इसलिए काम करना बंद नहीं किया जा रहा। तो ये गीता का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कि काम कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। यू कैन नेवर गिव अप एक्शन, कभी खत्म नहीं कर सकते। जिंदगी में वो उतार चढ़ाव आएगा, ऊपर नीचे आएगा, वो तो जिंदगी है। सीधी लाइन तो मुर्दे की आती है, इसी जीवन है। स्ट्रेट लाइन तो मरे हुए की आती है, बाकी तो सब ऊपर नीचे होता है। अगर जिंदा है तो ऊपर नीचे होगा, मर गया तो सीधी लाइन आएगी काम करना बंद नहीं किया जा सकता, कैसे भी करना पड़ेगा। ये तीन बार अर्जुन ने पूछा है भगवद गीता में, तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, अठारहवें अध्याय में, काम छोड़ दूं। और तीनों बार भगवान ने कहा काम नहीं छोड़ना है। लेकिन छोड़ना क्या है? काम के फल में आसक्ति को छोड़ना है, फल को भी नहीं छोड़ना है, फल में आसक्ति को। तो काम नहीं छोड़ना है, ये पहला गीता का सिद्धांत है, याद रखना चाहिए। लेकिन आज भी एक्शन लेस इन रशिया, इन रशिया अन रशिया, हम बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं करें, ऐसे हो नहीं सकता। तो किसके लिए काम करें, ये दूसरा प्रश्न उठता है। यू शुड वर्क फॉर, किसके लिए काम करें? अब आपसे पूछा जाए तो पहले आदमी कहता है कि काम किसके लिए करें? अपने जीने के लिए करें। दूसरा इससे जाएगा, अपने परिवार के पालन के लिए करें। थोड़ा कोई और कहेगा तो वो अपने समाज के लिए करें। कोई थोड़ा और आगे जाएगा तो बोले अपने देश के लिए करें। और आगे गया बोला वो मानवता के लिए करें, विश्व के लिए करें। तो ये सर्किल बढ़ता जाएगा काम का। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे काम किसके लिए करो मत कर, ग्यारह अध्याय का लास्ट वर्ष है, मत कर, मेरे लिए काम करो। क्यों बोलो? मैं तुमको सब कुछ दे रहा हूँ, क्या तुमको दूसरे देते हैं? तुम्हारे को जीवन मैंने दिया, चेहरे को सांस लेने के लिए हवा में मुफ्त में दे रहा हूँ। कोई कंपनी सरकार थोड़ी देती है तुम्हारे को हवा सांस लेने के लिए, जीने के लिए। तेरे लिए बरसात करके धरती से अनाज मैं पैदा कर रहा हूँ। तो तेरे जीवन के लिए जो तुम्हें जरूरी है वो सब तो मैं ही दे रहा हूँ, तो मेरे लिए काम करो ना। भाई आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, नौकरी के लिए तनख्वाह देता है तब ना। तो भगवान जिसने सब कुछ दिया है, ये पृथ्वी उसकी पत्नी है, उसकी गोद में सब पल रहे हैं। ये पृथ्वी विष्णु पत्नी है, उसकी गोद में सब पल रहे हैं। अब हम बाप के लिए काम नहीं करें, माँ के लिए काम नहीं करें, तो हम मूर्ख कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो ये जो भगवान कहते हैं मेरे लिए काम करो, तो उसको कहते हैं वर्किंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। मत कर्म मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर भूतेषु छत मामेति पांडव। ये भक्ति का सूत्र है, 11th चैप्टर का लास्ट वर्ष भक्ति का सूत्र है। तीन चीजें करो, काम मेरे लिए करो, प्रेम मुझसे करो, और जीवन में मुझे पाना तुम्हारा गोल होना चाहिए। मत परम का मतलब ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, गोल भगवान होना चाहिए, और मत भक्त का मतलब प्रेम मुझसे करो। शरीर से काम मेरे लिए करो, मन से मुझे पाने का संकल्प करो, और दिल से मुझे प्रेम करो। ये कृष्ण का आदेश है। अब आप सोचिए कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कंपनी के लिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? गांव में बंगला बनाना। और प्रेम किससे करते हैं? परिवार से। काम एक के लिए, लक्ष्य दूसरा, प्रेम तीसरे से। ये तो तीन टांगों में लटके हुए हैं। भगवान कहता है ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए काम भी मेरे लिए, पाना भी मुझे, और प्रेम भी मुझसे। इसको भक्ति कहते हैं। तो एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब भगवान के लिए काम करना, और इसमें कभी घाटा नहीं होगा, आप ध्यान रखना। यू विल नेवर बी इन लॉस। भगवान के लिए काम करेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस भगवान जवाबदारी उठाएगा, ही विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभुपाद ने एक भागवत के 10th कैंटो में परपट में लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ अवर डिवोटीज दे हैव नो फिक्स्ड जॉब बट दे आर ऑपुलेंटली मेंटेन्ड बाय कृष्ण। ये परपट है, एक्सपीरियंस ये हमारा अनुभव है कि ऐसे सैकड़ों हमारे भक्त हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन भगवान उनको बहुत ही ऑप्यूलेंटली बड़े ऐश्वर्य से उनका देखभाल भगवान कर रहे हैं। कृष्णा विल लुक आफ्टर द कंफर्ट ऑफ हिज डिवोटी। ये परपट का दूसरा परपट है। जो भगवान के लिए काम करेगा उसके अंदर लिखा है, 18th चैप्टर का 58 वर्ष का परपट है, 1858। वन हु वर्क्स 24 आवर फॉर कृष्णा, जो 24 घंटे कृष्ण के लिए काम करेगा, कृष्णा विल बिकम इंटीमेट फ्रेंड। वर्ड है कृष्णा विल बिकम, दिस इज प्रभुपाद पर्सनल रियलाइजेशन, ये प्रभुपाद का अनुभव। कृष्णा बिकम्स इंटीमेट फ्रेंड एंड कृष्णा लुक आफ्टर द कंफर्ट ऑफ हिज डिवोटी। नीड्स नहीं, कंफर्ट, ये वर्ड प्रभुपाद है। अपने भक्त के सुख सुविधा का भगवान ध्यान रखेंगे, एंड कृष्ण गिव हिमसेल्फ टू हिज डिवोटी, और भगवान अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। तो कृष्ण के लिए काम करने में कभी भी लॉस नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। वो लक्ष्मीपति है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारी सेवा से संतुष्ट हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब अपने काम के फल को कृष्ण अर्पण करना चाहिए। तो इसलिए आप आज सिर्फ एक ही चीज जीवन में ऐड कर लो, जो कुछ करते हैं एक शब्द कह दीजिए उसके पीछे, ये याद कर लीजिए, ये भगवद गीता का श्लोक है, कर्षु मद अर्पण कर्षु मद अर्पणम यद करोसि यद अस्नादि जहोसि ददाति यत तपस्या कौन से करुषो मुदारपणम। तो हमको क्या कहना चाहिए? श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। ये एक शब्द आप अपने जीवन में जोड़ दो, भगवान श्री कृष्ण हम जो कर रहे हैं ये आपको अर्पण कर रहे हैं। आदत डाल दो, जैसे मेक ए हैबिट। तो अभी सिर्फ जबान से कहो कृष्ण अर्पण कृष्ण अर्पण कृष्ण अर्पण, जो तनख्वाह मिलती है ला के घर में मंदिर में है कृष्ण आपको अर्पण कहना शुरू कर दो। When you say it, one day it becomes your nature. Thought will become one day, habit and habit will become nature. तो एक तो कृष्ण अर्पणम अस्तु ये शब्द याद कर लो, क्योंकि कृष्ण भगवद्गीता में यही कहते हैं और यही कर्म योग की परिकाष्ठा है, दैट इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ कर्म योग। अगर कभी प्रभुपाद जी कहते कर्म योग के लिए गीता से कोई श्लोक कोट करो तो दिस इज द वर्स्ट। यद करोषि यद अश्नासि यद जहोषि ददासि यद तपस्यसि तपस्यसि तत् कुरुषो मद अर्पणम जीवन। ओके, कुरुषो मद अर्पण वन एक श्लोक भगवद गीता से कर्म के लिए प्रभुपाद आगे कोट दिस वन। दूसरा एक जीवन में लाइन ऐड कर दो, जो कुछ हम करते हैं वो काय के लिए करते हैं, उसके लिए एक लाइन जीवन में ऐड कर लो। जो कुछ भी हम करते हैं वो हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, जनरली कृष्ण प्रीति अर्थे, स्टैंडर्ड इज कृष्ण प्रीति अर्थे, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, फॉर द प्लेयर ऑफ लाइफ। लेकिन उसको वैष्णव वे में कहेंगे तो हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, हम जो भी काम करते हैं हरि के गुरु के और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये हमारा कल्चर है, वी हैव टू डेवलप दिस डिवोशनल कल्चर इन आवर डे टू डे वॉकिंग एंड टॉकिंग। जब बोलते हैं या चलते हैं तो ये हमारा कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए। कोई मानो आपको देता है कुछ तो कर श्री कृष्ण अर्पण मस्त कृष्ण को अर्पण किया है, कुछ करते हैं मैं जप कर रहा हूँ कृष्ण प्रीति अर्थे, भगवद गीता पढ़ रहा हूँ कृष्ण प्रीति अर्थे, प्रचार कर रहा हूँ कृष्ण हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, तो इसमें आपका कर्तापन खत्म हो गया। कर्तापन और भोक्तापन, कर्तापन का मतलब डूअरशिप, भोक्तापन का मतलब एंजॉय, तो ये दो कंसेप्ट खत्म हो जाती है जो दुनिया में बंधन का कारण है। दुनिया में बंधन का कारण क्या है? कर्तापन और भोक्तापन, डूअरशिप एंड एंजॉयिंग मेंटेलिटी एंड डूअरशिप, ये दो बंधन है दुनिया के। तो ये दो शब्द कहने से हम एंजॉयमेंट कृष्ण को दे रहे हैं और फल भी कृष्ण को दे रहे हैं, तो कर्तापन भोक्तापन से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये दो शब्द याद कर लो, कृष्ण अर्पणम अस्तु, मैं श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ जो कुछ भी मेरे पास है। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या गाया है, जो कुछ भी, किसी को याद है? घर पुत्र परिवार जो कुछ मेरा है कृष्ण आपको अर्पण किया, तो भक्ति विनोद ठाकुर का सांग है, किसी को याद है? हाँ, जो कुछ को मेरा, बहुत सुंदर सांग है, कभी देखना ये भक्ति विनोद ठाकुर का भाव इसमें कि जो कुछ है अर्पिलो नंद किशोर, ये नंद किशोर आपको अर्पण कर दिया, आपके भाई को नहीं खुश हो गया जब हमारे घर में आ रहा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कर्म योग का ये दो श्लोक लिए थे पांचवें अध्याय से, एक श्लोक हमने दो दिन में उसके ऊपर चर्चा की, उस श्लोक के शब्द थे यही शंस प्रसजा भोगा दुख योनिते आद्यंतवंत कौन्ते नते सुरमते बुद्धा। तो इसके ऊपर चर्चा की थी, बुद्धा का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान जो वाइज मैन है वो इंद्रियों के भोग में रमता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुख का जन्म स्थान है, इंद्रियों के भोग में दुख जन्म लेता है। आप इंद्रियों का भोग करोगे तो दुख उसके अंदर पैदा होगा, वो भोगना पड़ेगा। हर सुख अपने अंदर दुख को जन्म देता है और उसका आदि भी है अंत भी है, दैट इज द बिगिनिंग एंड एंड। इसलिए आत्मा के आनंद का इच्छा करना चाहिए, हमको इच्छा करनी चाहिए इंद्रियों के सुख की नहीं, आत्मा के सुख की, आत्मा के आनंद का अनुभव करना चाहिए जो हमारी असली पहचान है। शरीर तो हमको छोड़ना ही है, तो शरीर का सुख तो शरीर के साथ ही छूट जाएगा ना। तो अब आज वाले श्लोक में है कि ये जो इंद्रियों के सुख है इसको सहन करना पड़ेगा। सहन करने का मतलब वी हैव टू टॉलरेट। सो आइए श्लोक पर, शक्नो तैव यः शोणम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम् युक्तः स सुखी नरः। ये सुखी नरः, पहले सुखी नर को समझ लो, वो ही व्यक्ति सुखी है। तो आप लोग सब लोग सुखी होना चाहते हो कि नहीं? सबों का जीवन में वो लक्ष्य है कि हम सुखी हो जाएं। और यहाँ भगवान सुख का सूत्र बता रहे हैं, आपको सुखी होना है तो, सुखी होना है तो क्या करें? सुखी न रहा वो आदमी सुखी है। कौन से देश का ये नहीं बता रहे हैं, कौन सी जाति का ये भी नहीं बता रहे हैं, कहीं का भी हो। ये भगवान की भाषा जब बोलते हैं तो वो सार्वजनिक बोलते हैं, सर्वकालीन और सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब पूरे एक ब्रह्मांड के लिए, सार्वजनिक का मतलब सब मानव जाति के लिए, और सर्वकालीन का मतलब सब समय के लिए। तो भगवान का वचन सब समय के लिए होता है, सब लोगों के लिए होता है और सब जगहों के लिए होता है। सब जगह के लिए, सब समय के लिए और सब लोगों के लिए। ये ब्यूटी है भगवान के शब्दों की। भगवान कहते हैं ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मेरा मत मानव जाति के लिए सदा रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नित्य, ये मेरा मत नित्य। और ये कर्म के विषय में मत है, ये इस कर्म के विषय में मत है, भगवान कहते हैं मेरा ये नित्य है, ये मानव जाति के लिए है। तो हम मानव जाति को सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला शब्द देखे, शक्नोति इह, यह का मतलब इस दुनिया में जब तक हम जीते हैं, यह मतलब इस दुनिया में। इसलिए हम कहते हैं भगवत गीता जीते जी का शास्त्र है, मरने के बाद की बात नहीं है, यही अभी इस वक्त। धर्म का फल तो मरने के बाद मिलता है, लेकिन भक्ति का फल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षावगमनम धर्मायम, ये धर्म प्रत्यक्ष है, अभी यहाँ इस वक्त इस सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये सुख प्रत्यक्ष सुख है, प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष, एक परोक्ष एक प्रत्यक्ष, दो शब्द हैं हिंदी में। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मीन्स इनडायरेक्ट, बाद में मिलेगा, यहाँ अभी इस वक्त। क्या करना चाहिए? शक्नोति, अगर कर सकते हो, शक्नोति का मतलब कर सकते हो, शक्नोति इज सिंपल, अगर कर सकते हो आप क्या कर सकते हैं? शोरूम, शोरूम का अर्थ है टॉलरेट, बर्दाश्त, सहन। अगर आप सहन कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, क्या? काम क्रोध उद्भवम वेगम, क्या सहन कर सकते हो? काम क्रोध, काम क्रोध दो चीजें हैं, काम और क्रोध। राम के छोटे भाई का नाम क्या है? उसको क्या बोलते हैं? रामानुज, राम अनुज। और काम के छोटे भाई का नाम है कामानुज क्रोध, कामानुज, काम और उसका अनुज, उसका छोटा भाई पीछे आता है, हम दोनों साथ रहते हैं, अलग नहीं होते। काम क्रोध उद्भवम का मतलब जिससे, जिसके कारण, क्या होता है वेव, वेव का मतलब छोली, वो सुनामी, वैसे इसको सुनामी समझना चाहिए, वेव का अर्थ है सुनामी, जो रोकी नहीं जा सके, वेव काल वेव। थाईलैंड के एक और जगह में था, गए थे जहाँ सुनामी ने एक नेवी की शिप को 2 किलोमीटर दूर फेंकी, उधर पड़ी है वो अभी देखने के लिए, कहाँ सी शोर से 2 किलोमीटर दूर आए थे, सुनामी फेंकी उधर पड़ी है, पूरा इतना दूर तक फेंक दिया। तो ये काम का वेग जब हमको आता है ना, तो ऐसे उठा के फेंकता है कि हम कहाँ जाते हैं हमको मालूम भी नहीं होता, माता पिता से अलग कर देता है, भाइयों से अलग कर देता है, ये क्रोध और काम ये परिवार से अलग कर देता है, स्त्री पुरुष में झगड़ा करा देता है, भाई भाई में झगड़ा करा देता है, ये सब दुनिया के दुखों का कारण है, काम और क्रोध ये सारे दुखों का कारण है। और ये तीसरे अध्याय में तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर यही कृष्ण ने दिया है, अतके न प्रयोक्तो यम पापम चरति पुरुष, पाप कौन कराता है कृष्ण, तो कृष्ण का उत्तर क्या था, काम एश क्रोध एश, ये काम और क्रोध सब पाप कराते हैं। तो दुनिया में सारे दुखों की जड़ ये है, आता कहाँ से, रजोगुण समुद्भव, इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, रजोगुण से। इसलिए प्रभुपाद ने इस काम की स्थापना की कि लोगों को सत्वगुण में लाया जाए। तो ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है, पहले लोगों को सत्वगुण के स्तर पे लाया जाए, यही प्रभुपाद के। मैंने अमेरिका में उतरते देखा कि लोग कहते हैं कि ये दुनिया के सुखी देश है, लेकिन ये तो मैं लोगों को देखता हूँ, ये लोभी रजोगुण के और ये तमोगुण में अज्ञानी लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है सुख कहाँ है। ये प्रभुपाद का पहला फर्स्ट इम्प्रेशन है अमेरिका का। ये प्रभुपाद ने फिर वो भजन लिखा जिसका नाम है मार्किनी भागवत धर्म, मार्किनी मीन्स अमेरिका, भागवत धर्म इन अमेरिका उस भजन का नाम है। उसी में प्रभुपाद कह रहे, कृष्ण आप मुझे क्यों लाए हैं, ये तो लोग रजो और तमोगुण में इतने दुखी हैं, अब मैं ये मेरा मेरा संदेश कैसे सुनेंगे। फिर वेदों की स्तुति भागवत के अंदर लिखा है, अगर कृष्ण इनके हृदय में, आप परमात्मा के रूप में तो रहते हो, अगर आप इनके हृदय को बदलोगे तो ये मेरी बात को समझ सकेंगे। तो प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भागवत के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए ये भजन गाया है प्रभुपाद ने, वहां लिखा है। तो रजोगुण से ये उत्पन्न होते हैं, तो हमारे को रजोगुण से निकल के सतोगुण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तमो और रजोगुण नीचा स्तर है मानव का, उसके ऊपर उठ जाएगा मानव तो सुख सतो संजायते सुखम, सतोगुण में सुख होता है। तो एक तो रजोगुण से निकलना चाहिए, पहले रजोगुण में लोभ होता है, अब दुनिया सारी लोभ के पीछे लगी हुई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था, रिसेंट रिसेशन इज बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द पीपल, उसका ये कमेंट था कि रिसेंट रिसेशन, ये जो अभी रिसेशन का मतलब क्या है, जो आर्थिक गिरावट आई है, आर्थिक पतन हुआ है, उसका कारण लोगों का लोभ है। और प्रभुपाद जी तो इसके ऊपर लिखते हैं, उदाहरण देते हैं कि ये लोभ मानव समाज में बहुत ज्यादा है, पशुओं में इतना लोभ नहीं देखा जाता। तब एक वो उदाहरण क्या देते हैं कि एक बोरी चावल की डाल दो, गधा भी जितना चाहिए उतना खाएगा चला जाएगा, चिड़िया भी 2 दाना खा के चली जाएगी, कुत्ता भी आएगा तो 2 दाना खाएगा कि कम सूंघ के चला जाएगा, लेकिन आदमी को पता लगे तो वो बोरी क्या अड़ोस पड़ोस वालों का भी उठा के चला जाएगा। ये जो लोभ है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो काम क्रोध उद्भवम वेगम, तो ये काम और क्रोध जो है ये वेग में हमेशा नहीं आ सकता, आप सदा हमेशा के लिए क्रोध में रह सकते हो क्या, नहीं, जस्ट कम्स फॉर ए मोमेंट और फिर चला जाएगा। तो काम भी ऐसे आता है और चला जाता है, हमेशा नहीं रह सकते, इच्छा हमेशा एक नहीं रहती है और क्रोध भी हमेशा नहीं रह सकता है। कितनी देर के लिए आप क्रोध में रह सकते हो, मैक्सिमम आदमी कितना क्रोध में रह सकता है, एक दिन रहे तो पागल हो जाएगा, एक घंटे के बाद ही क्रोध, मैक्सिमम 1-2 घंटे के बाद उसका क्रोध नहीं उतरेगा तो मर जाएगा, तो क्रोध तो आग की तरह जला देगा आदमी को। बर्न द एंगर बिफोर इट बर्न्स यू, क्रोध को पहले ही नहीं जला दो, आपको जला दे उससे पहले। तो ये क्रोध का वेग आता है तो उसको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। मतलब कब तक सहन करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कब तक ये काम और क्रोध आता रहेगा, ऐसा प्रश्न आपसे अगर पूछे हैं तो ये काम, काम का मतलब एक है इच्छा, इच्छाओं का उत्पन्न होता, एक काम का अर्थ है लक्ष्य। ये कब तक आदमी को आती रहेगी, ये प्रश्न है। काम और क्रोध कब तक हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालेगा, जब तक जीवित है। ये बहुत ये ऐसा सच है जैसे ट्रूथ है, क्या कहते हैं, ये ऐसा सत्य है जैसे कि कल सुबह होगी, ध्रुवम सत्य, अटल सत्य है। जब तक जीवित है तब तक ये काम और क्रोध सताता रहेगा। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते थे, किसी मंत्री ने, बीरबल नहीं, अकबर से, अकबर ने पूछा काम क्रोध कब खत्म होगा इंसान का, बीरबल ने कहा जब मरेगा तब। सुनो नहीं, ऐसे कैसे होगा, आदमी एक उम्र के बाद तो ये खत्म होना चाहिए। बोलो नहीं, बोला आप इसको प्रूव करो, प्रमाण दो। बीरबल ने अकबर को कहा आप चलिए हमारे साथ हॉस्पिटल में, जो 80 साल का मरने वाला हो नजदीक में पड़ा हो उसको देखने चलते हैं, लेकिन आप एक काम करो, आपकी लड़की नौजवान को साथ ले चलो। तो राजा की लड़की और मंत्री तीनों अस्पताल में, मर जो आदमी मरने वाला था, आंखें भी अंदर चली गई थी, गाल अंदर, कुछ दो चार दिन का मेहमान होगा, उसको किसी ने कहा राजा मिलने आया है आपको, तो आंखें खोल के बैठा, लेकिन राजा को देखने के बजाय वो लड़की को देखा। बीरबल ने कहा महाराज देखो, ये देखो अभी मरने को है तो काम खत्म हुआ, इसका क्रोध खत्म हुआ नहीं हुआ। ये प्रभुपाद जी ये उदाहरण दिया करते थे कि ये काम, इसलिए बीच वाली लाइन को अब पढ़िए, प्राक शरीर विमोक्षणा, जब तक प्रकृति का दिया हुआ शरीर समाप्त नहीं होता है तब तक इसको सहन करते रहो। नहीं इस श्लोक को अभी ठीक तरह समझ में आए, ये काम और क्रोध हमेशा सताते रहेंगे जब तक जीते हैं तब, इसलिए इसको तब तक सहो जब तक जीवित हो। अरे नहीं हो पाएगा तब लास्ट लाइन को देखो, फिर भगवान का सहारा ले लो, संयुक्त जो मेरे पास खड़ा हो जाएगा तो मैं पकड़ लूंगा, ये सुनामी उसको उड़ा के नहीं ले जाएगी। इसका अर्थ ये होगा कि वो वेग उसको नहीं ले जाएगा जो मेरे पास खड़ा होगा। युक्त का मतलब किसी के पास में खड़ा हो जाना, युक्त का मतलब जुड़ना किसी से, भगवान से जुड़ना। योग और युक्त दोनों का अर्थ एक ही है, जो मुझसे प्रेम और सेवा के भाव से जुड़ा रहेगा उसको काम और क्रोध का वेग नहीं ले जाएगा। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ, इसलिए ये बात ध्यान में रखिए कि ये मन, इसके पर्पट में प्रभुपाद जी ने वो छह वेग लिखे हैं, जो उपदेशामृत का पहला श्लोक है, इसके छह वेगों का लिखा है, बीच में जाइए छह वेग पूरे लिखे हैं। देखो फोर्सेस, फोर्स ऑफ एंगर, फोर्स ऑफ टॉक, फोर्स ऑफ एंगर, फोर्स ऑफ माइंड, फोर्स ऑफ स्टमक, फोर्स ऑफ यूनाइटेड एंड फोर्स ऑफ टंग, ये छह वेग लिखे हैं प्रभुपाद जी, ये वेग हैं छह। तो ये छह वेग हमें जब जीते हैं तब तक ये रहेंगे, तो क्या करना चाहिए हमको, इसको टॉलरेट करना चाहिए, इसको एग्रावेट नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जस्ट ट्राई टू अवॉइड एग्रावेशन। तो मंदिर में आएंगे तो ये वेग परेशान नहीं करेंगे, और अगर किसी क्लब में जाएंगे तो ये वेग आपको परेशान करेंगे, वो उत्तेजित करे, दैट विल एक्साइटमेंट, वो उसको और ज्यादा इग्नेट करेगा वेग को। तो उस एटमॉस्फेयर को अवॉइड करो जिसमें वेग बढ़ते हैं, वो खाना मत खाओ जिससे वेग बढ़ते हैं तो साथ में खाना खाओ, वो म्यूजिक मत सुनो जिससे वेग बढ़ते हैं कानों को हरि कीर्तन सुनाओ। तो वेग बढ़ाने वाले जो भी चीजें हैं उनको अवॉइड करो। कब तक? जब तक जीते हो, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। संयुक्त अगर आप भगवान से जुड़े रहोगे तो फिर आपका खाना भगवान का प्रसाद हो जाएगा, आपका सुनना भगवान का कीर्तन हो जाएगा, आपका सारा काम भगवान की सेवा हो जाएगा, तो फिर आप सुखी हो जाएंगे। तो अब इस श्लोक से सुख का साधन क्या है? असल में इस सारे श्लोक के अंदर मोस्ट पावरफुल जो वर्ड है वो है संयुक्त। अपने हम बल से काम क्रोध को नहीं रोक सकते। रोक सकते तो इस दुनिया में आते क्यों? वाई वी आर हियर? अगर हम रोक सकते तो आते ही नहीं ना यहाँ। तो हम नहीं रोक सकते, ये हमको मानना चाहिए। अब क्या करें? बोला सहारा लेना चाहिए। किसका? भगवान का सहारा लेना। तो असल में बहुत इस श्लोक के अंदर जो तो वापस श्लोक ब्रिंग श्लोक बैठ श्लोक में सयुक्त और सुखी न रहा, वो जो भगवान से जुड़ा है वही सुखी है। तो ये जो सूत्र लास्ट का है ये सबसे बड़ा है, और युक्त भक्त दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा। जो युक्त वो है जो भक्त है। सयुक्त स सुखी न रहा एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परिपासते, ऐसा उद्मा है ना, सेम वर्ड है ना युक्त। बारहवें अध्याय में भक्ति योग में क्या शब्द है? क्या है? एवं सतत युक्त सयुक्त, वो सतत युक्त जो सदा के लिए जुड़ा हुआ है। तो ये युक्त इसमें भक्ति का सूचक है। तो कौन इनको काम और क्रोध के वेग को सेंस कर सकता है? जिन्होंने भगवान का शरण लिया है। तो कौन हमारे को रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा, हम अपने तरफ से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ये जीते जी हमको भगवान की भक्ति करने का अभ्यास करना चाहिए, अगर काम क्रोध के वेग से बचना है अथवा दुख के कारण से बचना है और सुखी होना है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। अब ट्रांसलेशन इसकी पढ़ लीजिए। बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, प्राक शरीर विमोक्षणार्थ, ये है प्राक शरीर विमोक्षणार्थ का ट्रांसलेशन। इफ वन इज एबल टू ट्रावल इट, शक्नोती यह छोड़ू, उसका ट्रांसलेशन है। अर्जिस ऑफ द मटेरियल सेंसेस, काम क्रोध उद्भवम वेगम, चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, ही इज वेल सिचुएटेड संयुक्त इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड सुखी न रहा। अगर ऐसे आप इस ट्रांसलेशन को श्लोक के साथ जोड़ के करने का अभ्यास करेंगे देन यू विल रिलिश इट कि एक एक लाइन कैसे श्लोक से जुड़ी हुई है। यू रीड द वन वर्स श्लोक एंड देन सी द ट्रांसलेशन हाउ इट इज कोऑर्डिनेट, उसमें कैसे वेल रिटेड है। मटेरियल सेंसेस अर्जिस ऑफ द मटेरियल सेंसेस, मटेरियल सेंसेस शब्द तो है नहीं, कहाँ है कहीं श्लोक में शब्द नहीं है सेंसेस, तो ये सेंसेस शब्द लिखा क्यों है? पीछे लिख दिया है डिजायर एंड एंगर, काम और क्रोध। तो काम और क्रोध कहाँ आएंगे? मन में आएंगे, और सेंसों के सेंस के द्वारा उसकी ट्रांसलेशन होगी। और ये इसको ठीक तरह समझने के लिए फिर तीसरे श्लोक में जाइए, तीसरे अध्याय में जाइए। ये काम क्रोध कहाँ रहते हैं, इनके रहने की जगह क्या है? मन इंद्रिय बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। तो काम क्रोध के रहने की जगह कौन है? मन इंद्रियां और बुद्धि। तो इंद्रियां हो गई सेंसेस, और मन और बुद्धि भी इसके रहने की जगह है। अच्छा, ये तीन जगह रहने की है, तो आपको इस दुश्मन को निकालना है तो कहाँ से निकालेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे उसको खदेड़ना, तो पहले किसको आप रोकें, कहाँ से उसको भगाएंगे? मन से। मन ही नहीं हाथ आएगा तो कहाँ से मन से भगाएंगे? मन हाथ कहाँ आता है? मन पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते आदव इंद्रिय संयम, पहले पहले इंद्रियों को, मोटी है ना भाई, आप कम से कम अपने पाँव को तो रोक सकते हो गलत रास्ते से जाने से, मन नहीं रुके तो आपके बस में नहीं है, लेकिन इंद्रियां तो रोक सकते हो, तो आदव इंद्रिय संयम। इसलिए प्रभुपाद ने यह शब्द लिखा है मटेरियल सेंसेस, कि आपके बस में ये है, मन आपके बस में है नहीं। मन हमारे बस में है क्या? नहीं, हम मन के बस में है, मन हमारे बस में है, ये तो समस्या है सबसे बड़ी। तो इंद्रियों को संयम में लाना, और भक्ति का रास्ता इंद्रियों को संयम में लाने का पहले है। हमारा जो भक्ति की प्रक्रिया जो भी है वो इंद्रियों को, खाना प्रसाद है, मुख से गाना भगवान का नाम है, तो ये सारी इंद्रियां हैं। सो पहले इंद्रियों को भगवान की सेवा में, साधन भक्ति का मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये साधन भक्ति। मन भगवान में लग जाए तो राग हो गया, तो ऊपर का स्तर हो गया। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब तक जीवित है तब तक हमको सहन करना चाहिए इंद्रियों के भोग की इच्छाओं को, जो नहीं मिलता है तो क्रोध आता है, उसको सहन करना चाहिए। अब तो बहुत मुश्किल हो गया, ये क्रोध कैसे सहन करें? अब यहाँ एक बात और थोड़ा सा सीख लीजिए, दो शब्द है, एक क्रोध शब्द है, उसका अर्थ है किसी को नुकसान पहुंचाना। आदमी क्रोध करेगा तो दूसरे को मारेगा, हिंसा में परिवर्तित हो जाएगा। एक और शब्द है क्षोभ, वो भी क्रोध जैसा ही होता है, लेकिन उसमें दूसरे का अहित नहीं होता है, दूसरे का हित होता है। दोनों शब्द कैसे? जैसे एक डायबिटीज का, एक शुगर का हस्बैंड है, और वो अगर रसगुल्ले में हाथ डाले और उसका बेटा या पत्नी कहे नहीं खा सकते, और उससे छीन ले और जोर से बोले, तो क्रोध तो हो गया, लेकिन वो क्रोध उसके भले के लिए है, तो वो क्रोध नहीं कहलाया, वो क्रोध नहीं। ऐसे माँ बच्चा स्कूल नहीं जाता है, होमवर्क नहीं करता है, तो बहुत क्रोध करती है, वो क्रोध नहीं है, वो बच्चे के नुकसान के लिए नहीं है। तो ये थोड़ा सा दोनों में अंतर को समझना चाहिए। एक क्षोभ होता है, वो भले के लिए होता है, और वो प्रेम की पहचान होती है, जिससे प्रेम होता है उसी को डांटते हैं, उसी के ऊपर क्रोध आता है, जो अपना होता है दूसरे के ऊपर नहीं आता, तो वो क्रोध नहीं है। क्रोध वो है जिसमें दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को डांटना बंद कर दो, इसका मतलब नहीं, वो क्रोध नहीं है, वो क्षोभ कहलाता है। उसका मतलब है उसका हम हित चाहते हैं, वो प्रेम के, अति प्रेम के कारण होता है, वो अति प्रेम के कारण होता है। ऐसा क्रोध तो राधा रानी भी करके बैठ जाती है, कृष्ण से नहीं मिलती है, तो वो क्रोध नहीं, वो प्रेम बढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पहले तो क्रोध का ये अर्थ ठीक तरह समझना चाहिए, कि क्रोध वो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए या अपने को जलाए, इस क्रोध से अपना जलता नहीं है, जलता मैं खुशी होती है कि मैं इसको रोक रहा हूँ गलत काम करने से, तो ये क्रोध नहीं है। तो काम क्रोध को सहन करना चाहिए, किसको? हमको आता है दूसरे को सहन करना चाहिए, हम तो क्रोध करते रहेंगे दूसरा सहता है। इसका ये भी अर्थ निकाल सकते हैं, हमेशा नहीं रह सकता है ये क्रोध। एक किसी ने हमको कहा कि जब कोई क्रोध करे तो उसको आईना दिखा दिया करो, वो अपना मुंह देखेगा तो उसका क्रोध खत्म हो जाएगा। क्यों? अपना मुंह क्रोध का कोई देख नहीं सकता, इतना बुरा होता है असल में कि उसको देखें तो सचमुच आंखें बंद हो जाएंगी और क्रोध खत्म हो जाएगा। तो कहीं किसी बच्चे को हम बता रहे थे ऐसे, तो दूसरे दिन माँ थोड़ा सा बच्चे को डांटने लगी, बच्चा दौड़ता हुआ बड़ी आईना लाके माँ को दिखा,
माँ ने अपना चेहरा देखा, ये क्या कर रहा है? बोला ये तो प्रभु ने कहा क्रोध करे उसको आईना दिखाओ। क्रोध अपना चेहरा कभी क्रोध में देखना बहुत भयानक हो जाता है, बहुत भयानक। क्रोध को सहन करना चाहिए हमको, कोई और करता है तो ऐसा नहीं कहते वी शुड डाल रहे थे, थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाएगा, क्रोध हमेशा थोड़ी रहेगा। लेकिन प्रभुपाद ने इस क्रोध के लिए नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहा है कि क्रोध खत्म नहीं किया जा सकता, इस क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जाए। जैसे अर्जुन लड़ाई कर रहा था, कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था, तो बगैर क्रोध के लड़ाई तो नहीं हो सकती। तो हनुमान जी क्रोध को लंका को जलाने के लिए लगा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने क्रोध को स्पेशली कहा है कि क्रोध खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए इस क्रोध को भगवान की सेवा में लगाओ। क्रोध करना है तो अपने ऊपर करो कि मैं सवेरे उठ से क्यों नहीं उठ पाता हूँ, मेरा जब ठीक तरह क्यों नहीं होता है। अपने ऊपर क्रोध करने से तो अच्छा है, दूसरे के ऊपर नहीं करना चाहिए। और ये तो स्त्री से पूछ लो, कोई काम वाले से अगर गिलास टूट जाए तो आधा घंटा चिल्लाएंगी, और अपने से पूरा जग टूट जाए तो चुप करके कोने में डाल देंगे। तो दूसरे के ऊपर तो क्रोध बहुत जल्दी आता है, अपने हाथ से कुछ भी होगा बस कुछ नहीं चुप हो जाते हैं। एक पहले हमको किसी ने एक विनोद बताया था कि दिवाली के दिन से एग्जाम बच्चे का था, ट्यूशन भी बचा लेता था, पढ़ाई भी अच्छी कराने के लिए स्कूल भी अच्छी में डाला था, बाप कहीं बिजनेस के टूर पे गया, घर में आया तो पेपर देखा बच्चे की 5 मार्क्स 50 से, बहुत क्रोध आया कि क्या करता है बच्चा, ट्यूशन अच्छी स्कूल की फी इतना खर्चा करते हैं, फेल हो गया। पत्नी को बोलता है क्या तुमने खराब किया बच्चे को? बच्चा कहता है पिताजी मैं तो 40 मार्क्स लाया हूँ 50 से, मैं तो फर्स्ट डिवीजन में आया हूँ, अच्छा पास। ये क्या देखो पेपर पर आया, झूठ बोलता है हमसे, एक तो गलत करते हैं फिर झूठ बोलता है। पत्नी ने आखिर कहा कि पहले देखो तो सही पेपर है किसका। ये दिवाली है हम सफाई कर रहे हैं, तो नाम अपना देखा कि जब खुद पढ़ता था तो 5 मार्क्स खुद ने उठाए थे, अब उसका क्रोध समाप्त हो गया। ये क्रोध दूसरों के ऊपर नहीं है, अपने ऊपर। दूसरे के ऊपर क्रोध करना बहुत आसान है, विवेक में आता है, तो इसलिए क्या करना चाहिए। पर्वपट के अंदर प्रभुपाद जी विशेष रूप से कहते हैं इन वेगों को सहन करो जब तक जीते। कैसे लास्ट पार्ट में देखेंगे तो लिखेंगे, ये तो सिर्फ भगवान की सेवा में लगने से हो सकता है। पर्वपट का लास्ट पार्ट देखिए, इसके बाद कंट्रोल डिजायर एंड एंगर एज दे सरेंडर अन टू मी, सेल्फ रियलाइज एंड इज दी हैप्पी इन दिस। One who gives the material, one who can do this is understood to be self-realized and is thus happy in the state of self-realization. It is the duty of the transcendentalist to try seriously to control desire and anger. Okay, Nietzsche? Hey, is over? No. Over. Okay. Hare Krishna. So, he hamare ko kehte hain, we should really be serious about this वर्स। किसी कोई प्रश्न है, कोई जगह सम क्वेश्चन और कमेंट आज के वर्ष से क्या आप व्हाट यू वांट टू टेक। कभी कभी हम ये श्लोक जब बोलते हैं तो 4-5 दिन हम क्रोध नहीं करते, कोई होता है तो अभी 4-5 दिन कोई गुस्सा भी करता है तो जैसे कोई चाल रही पड़ा है ना, एटलीस्ट इट विल हैव इफेक्ट फ्यू डेज, टॉलरेट व्हाट इज द प्रॉब्लम, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। एक और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, हाईवे में जब गाड़ी दो चलाते हैं आमने सामने दोनों की लाइट अप होगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा, एक्सीडेंट होगा। इसलिए बुद्धिमान ये है कि जब एक की लाइट ऊपर हो तो अपनी लाइट दूसरी नीचे करे और साइड से गुजर जाए, तो क्रोध का मतलब उसकी लाइटें अप होती है। इसलिए बुद्धिमान अपलाइट करेगा ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए डाउन लाइट अपना करके साइड से गुजर जाए तो अच्छा। एक महाभारत में कथा आती है, आपने सुनिए पढ़िए। कृष्ण बलराम और सात्यकी तीनों साथ घूमते हुए रात को एक जंगल में सो गए। का जंगल बहुत खतरनाक है, एक आदमी चौकीदारी करेगा। तो पहले सात्यकी चौकीदारी किया तो एक राक्षस आया, बोला देखो मैं तुमको नहीं खाऊंगा, छोड़ दूंगा, इन दोनों को मैं खा जाऊं। बोला तुम कृष्ण बलराम को कैसे खा सकते हो, मैं सात्यकी हूं, जानते नहीं। और लड़ाई किया एक डेढ़ घंटा लड़ाई किया, वो तो मरे नहीं मरे तो टाइम उसका खत्म हुआ, वो तो भाग गया राक्षस। ये इतना थका था, बलराम उठो तुम्हारा टाइम है, अभी चौकीदार करो, मैं सो जाता हूं, उसको बताया नहीं। बलराम उठ के बैठा तो वही राक्षस दोबारा आया। वो राक्षस जब दोबारा आया तो उसने कहा देखो आपको छोड़ दूंगा, इन दोनों को खाने का मुझे इजाजत दे दो। ऐसे कृष्ण को सात्यकी को कैसे खाएगा, मैं बलराम जानते नहीं हूँ। युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, दो घंटा युद्ध किया, मरा नहीं, वो भाग गया। बलराम थक गया, कृष्ण को उठाया। अब कृष्ण को बताया नहीं उन्होंने, कृष्ण उठा लो, राक्षस दोबारा आया, बोला तुमको छोड़ूंगा, इन दोनों को खाऊंगा। फिर नाचने लगा, खाओ, तुम क्या खाओगे, तुमको खाना आता है। वो छोटा होता जा रहा है और कृष्ण जोर से आते हैं, मूर्ख कहाँ खाएगा, तुमने कभी खाया है किसी को। वो छोटा हो गया, कृष्ण उसको उठा के जेल में डाल दिया। सुबह तीनों उठे तो कहता है सात्यकी राक्षस बहुत बड़ा भयंकर आया था दो घंटे। बलराम के आपने मुझे बताया नहीं, वो मेरे सामने भी आया, दो घंटे मेरे लड़ाई की मराने भाग गया। कृष्ण का क्या बात कर रहे हो, कौन सा राक्षस निकाला, ये तो हाँ यही है। ये क्या बोला, ये क्रोध है, इसके ऊपर क्रोध करोगे तो ये बढ़ेगा, इसके ऊपर हंसो बोले तुम कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आप छोटा हो जाएगा। इसको थोड़ा जो क्रोध करे आप हंसना शुरू करो अपना, उसका क्रोध आपका छोटा होता जाएगा, वो अपने आप दबके बच जाएगा। महाभारत में छोटी सी इसके ऊपर ये कथा है। सो जस्ट यू लाफ, कोई क्रोध करे क्या करे। प्रभुपाद की
जय।
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। वो सिखाया कौन तपस्या करना, अगर भगवान नहीं करेंगे तो चेतन महाप्रभु आके भक्ति नहीं सिखाते तो हम भक्ति कैसे करेंगे। तो भगवान सिखाते हैं कि भारतवर्ष में तपस्या करनी चाहिए, इसलिए भगवान ने तपस्वी को नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो ये भगवान ही सिखा, सेवा करना कौन सिखाएगा, बलराम जी के अवतार में आके हमको सेवा सिखाते हैं, नहीं तो सेवा हमें क्या पता कैसे भगवान की होती है। भक्ति करने के लिए महाप्रभु भक्ति सिखाने के, तो यज्ञ आचार्य श्रेष्ठ भगवान स्वयं, ये जब श्लोक आता है भगवत गीता में यज्ञ आचार्य श्रेष्ठ, उसके बाद भगवान कहते हैं मुझे कुछ करने को नहीं है फिर भी मैं करता हूँ। भगवान अपने आप को श्रेष्ठ का एग्जाम्पल देते हैं, तो ये भगवान खुद सिखाने के लिए आते हैं। हरे कृष्ण,
मंदिर की मैनेजमेंट करते हैं, उनको भी लोग और काम क्रोध दिखाना पड़ रहा है, दिखाते हैं इस तरह कैसे करने का बहुत एग्जाम।
वो भगवान के लिए काम क्रोध करने में कोई खराबी नहीं है, अच्छा है, हनुमान की तरह लंका जला लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी हमारे को हम प्रचारक हैं, इसलिए सहनशीलता हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वी शुड बी मोर टॉलरेंट देन फ्री, दैट्स व्हाट महाप्रभु से। अगर हमें अपने जीवन में सहनशीलता को ज्यादा लाना चाहिए, निम्रता और सहनशीलता, हम्बलनेस एंड टॉलरेंस, दीज आर दी आर्नामेंट्स ऑफ ए डिवोटी। जैसे पिताजी को बच्चे के ऊपर थोड़ा सा क्रोध करना है तो जैसे मंदिर के अधिकारी को कोई गलत काम करता है उसको करना है, तो किसको करने का किसी को अधिकार है ये भी डिसाइड करना चाहिए। हरेक के ऊपर हरेक को करने का अधिकार नहीं। जैसे पिता बच्चे अपने बेटे को कह सकता है, मंदिर का अध्यक्ष काम करने वालों को कह सकते हैं, देन इज ए ज्यूरिडिक्शन पर एवरी वन, उसी के अंतर रह के करना चाहिए। लेकिन नहीं तो ऐसा तो नहीं है। वो भी एक कथा नारद जी की जो सुनी है ना, सांप को नारद जी ने कहा तुम देखो किसी को काटना मत, तो सांप ने काटना बंद किया, पत्थर मारे लड़के, पत्थर मारे नार्ग वहां से गुजरा। बोले तेरा हाल ये क्यों हो गया? बोला आपने गुरुजी कहा कि काटना मत, इसलिए काटता नहीं वो पत्थर मारते। बोला मैंने बोला काटना मत, मैंने छू छू करना मन तो मन नहीं किया था, तुम पत्थर उठा के छू छू करके भगाते हो, काटना मत। तो ऐसा है कि किसी को काटना मत, लेकिन थोड़ा सा छू छू करते हैं, नहीं तो लोग पत्थर मारेंगे। हाँ, मैंने आपको फन दिखाने की मना नहीं की थी, काटने की मना की। तो किसी को काटना नहीं, मतलब सेवा से नहीं निकालना, क्योंकि उसका धर्म है, लेकिन फूफू करते रहना चाहिए, थोड़ा सा नहीं। लोग हमारे को ऐसा होना चाहिए कि 64 माला करें, 16 करोड़ क्यों करें, ये लोग हो जाएंगे धन है भाई, यही तो गोलोक का धन है, यही कथा करने का लोग हो जाए तो अच्छा, ये लोग हो जाएगा कथा 2 घंटे होना चाहिए, 1 घंटा क्यों होना चाहिए, ऐसा लोग हो जाए तो बहुत अच्छा है। भगवान के भक्तों के संग का लोभ हो जाए, भगवान के नाम को शास्त्र पढ़ने का लोभ हो जाए, ये लोभ से तो लोलियम एकम रूप गोस्वामी कहते हैं, भगवान की प्रेम प्राप्त करने का कीमत केवल लोभ है, लोभ ही ये कीमत है, यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ ग्रीड। तो वो जो राग भक्ति ग्रीड से होती है, तो ग्रीड ही भगवान की सेवा में लग सकती है, कि भगवान के नाम में जपने में लोग हो जाए तो अच्छा, ये बड़ा से धन कटा करे असली, ये तो काम आएगा। तो लोग कैन बी एवरीथिंग कैन बी यूज इन कृष्ण भक्ति, और सबका उदाहरण भी है कि हर एक अपने अपने किस चीज को भगवान की सेवा में लगा के सुखी हो सकते। हरे कृष्ण। ये आपका कोई प्रश्न है?
Remembering the God, automatically these two are controlled. But when the time we go out, also we have seen so many rishis also, even after elevating themselves, they are also having this aman. Because when we go out, naturally we try to do other work, automatically these two comes because our mind is rotating
or something. It is not easy, his whole life practice is very difficult. Therefore, that the chanting is whole life practice, not for a few days or a few months. So devotion is also not only in this life, when we leave this body, we go, the bhakti will go along with us. Prabhupada has given a good example. But we are practicing devotional, when we go and liberate and go to Golok, again the same thing will continue. Then Prabhupada gave the example of mango. The mango, when it is green, it is bitter, it is still called mango. But when it is ripe, it is sweet. So in this world, when we are doing devotion, it is like a green mango. So we are just trying to mature. But in the mature state also, mango is called mango. So when we perform our devotion and Golok Dham, then it will be sweet and relishable. So mango is here, is also called mango, and there is also called mango. But the difference is, the mango is not. So devotion will continue. We have to continue devotion. Then we can only be able to minimize the aggravation. And all the rishis, they are being really carried out by kaam and krodh. There are 2 reasons. One reason is to teach to the whole world that they are so powerful, such great personalities can be carried out, then what about us, common people? This is one aspect. And the other aspect is sometimes to liberated rishis, they do the leela or drama to teach us that this is so powerful that you have to be very vigilant on every moment. So there are 2 types of rishis. One, some rishis are carried really by the kamakrodha, and some rishis are simply taking part in the pastime of Lord to demonstrate this thing. Like Hiranyakashipu is lobby. Lobh ka pratik kona Hiranyakashipu. And Hiranyakashipu is not lobby, he is the servant of Narayan. He is simply performing this pastime to teach us that such a Ravana is Kami. He Ravana, this is 3, Kam, Krodh, Lobh, Narka, Dwaram. Bhagavad Gita, this is the verse. Kam, Krodh, Lobh, Trai, Narka, Dwaram. It is Narka, Dwaram. Kam ka pratik Ravan, Krodh ka pratik Sisupa, or Lobh ka pratik Hiranyakashipu. They are the 3 typical examples. Lekin ye tino Bhagavan ke bhakt, parshit Bhagavan ki leela mein bhaag leke humko sikhane ke liye aaye the. They are not actually Kami, Krodhi, Lobhi, they are the servant of Lord Vishnu. But they are simply taking part in Leela to teach us. Lekin kuch aise rishi hain, jise Vishwamitra ji badi tapasya karne ke baad bhi kaam mein chale gaye. So that is, then he has to again redo everything. there are two types. You have two explanations for this, not one. Hare Krishna. We have to practice devotional service very seriously and vigilantly throughout our life to minimize the aggravation, but it's still, if we become little loose, then they will be powerful. They are just waiting. Isko kehte hain shikari kabhi bhi shikar parande ke upar vishwas nahi karta. He never trusts the bird shikari. Kisi ko bhi bhag jayega. To devotee ko kabhi bhi man aur indriyon ke upar vishwas nahi karna chahiye. Never trust them. Anytime they can cheat us. So always we should be at guard. That's most important. Jaise shikari pashu pakshi ke upar kabhi aur vishwas nahi karta hai, aise kabhi bhi indriyon aur man ke upar vishwas nahi karna chahiye. Wo kisi waqt bhi patan ke raaste pe le ja sakte hain. इसलिए भक्तों के संग में रहना सबसे अच्छा है, बिकॉज दे कैन सेव अस. द बेस्ट थिंग इज, एंड आई हैव टू ऐड वन थिंग, भगवान से कैसे जुड़े रहेंगे हम, तो भगवान तो हमारे सामने है नहीं. देन वी नीड रियली द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी, दे विल हेल्प अस टू बी यूनाइटेड विद लॉर्ड. तो भक्तों से युक्त होना भगवान से युक्त होना है. एक्चुअली भक्तों के संग से भगवान से मिलेंगे तो हम ये करना संभव हो जाएगा. तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, वो हमारे को भगवान के संग कराने में सहायता करे. हरे कृष्ण. टुमारो मॉर्निंग भागवत क्लास 7:40 हरि बोल.